أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خدا در اندیشہ انسان اس پر گفتگو کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خدا انسانی تصور میں. پہلے درس میں آپ کو بیان کیا تھا چونکہ اس بحث کے اندر محور جو ہے وہ تصور انسان ہے کہ اس تصور کے اندر خدا کیسے منعکس ہوتا ہے, خدا کیسے آتا ہے. تو اس بحث کی مناسبت سے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے ذہن کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کی. اس کو تشبیہ دی آئینے کے ساتھ کہ اگر ذہن کی حقیقت سے آشنا ہونا چاہتے ہیں تو آئینے کو سامنے رکھیں, اس کے اندر تدبر و تفکر کریں. تو ذہن کی حقیقت کیا ہے, مختصر سا ذہن قریب ہو جائے گا آپ کے. لیکن پھر اس کے بعد یہ بھی بیان کیا کہ یہ جو تشبیہ دی جا رہی ہے یہ 100% مساوی تشبیہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ذہن اور آئینہ جو ہے وہ بالکل 100% ایک جیسے عمل کرتے ہیں, بلکہ ان کے درمیان بہت زیادہ فرق موجود ہے. اور دو فرق کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا تھا. ان دو فرق کو بیان کرنے کے بعد شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ اس سوال کو یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ خداوند متعال انسانی فکر کے آئینے میں, انسانی تصور میں کس طریقے سے منعکس ہوتا ہے, معرفت خدا کس طریقے سے پیدا ہوتی ہے, انسانی ذہن کے اندر کس طریقے سے خدا جو ہے وہ منعکس ہوتا ہے. تو یہاں پر شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم انسان کو دیکھیں, انسانی ذہن کو دیکھیں, تو جہان کے بارے میں وہ کس طریقے سے آگاہ ہوتا ہے اور جہان جو ہے کس طریقے سے اس کے ذہن میں منعکس ہوتا ہے, وہ کیا ہے, وہ جہان جب اس کے مقابل میں آ جائے, جیسے میں نے پہلے درس کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر کوئی چیز مقابل میں ہوگی تو مجھے اس کا علم ہوگا, میں آپ کے مقابل ہوں گا تو آپ میرے بارے میں علم حاصل کریں گے, میری تصویر آپ کے ذہن میں جائے گی, میں جو ہوں وہ آپ کے ذہن میں منعکس ہوں گا اور آپ میرے عالم بنیں گے. اگر آپ میرے سامنے نہ ہوں یا میں آپ کے سامنے نہ ہوں تو یہ علم حاصل نہیں کر سکتے. تو آپ فرماتے ہیں کہ خداوند متعال جو ہے وہ تو مقابل نہیں آ سکتا, چونکہ خدا جو ہے وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے, پاک و پاکیزہ ہے اس حوالے سے. تو اس کو کس طریقے سے انسان اپنے ذہن میں منعکس کرتا ہے اور اس کے بارے میں معرفت حاصل کرتا ہے. تو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ اس مطلب کو مزید کھولتے ہیں, یعنی سوال کو ابھی کھول رہے ہیں تاکہ پھر اس کو مطلب کہ جب جواب دینے لگیں گے تو اس کی طرف توجہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے اور انسان ہمتن گوش ہو کر ان مطالب کو سنے اور پھر ان مطالب کو حل کرے آ کر. تو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے تین حقیقتیں ہیں, ایک جہان ہے, ایک خدا ہے اور ایک خود انسان ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو جہان کا انسان کے ذہن میں منعکس ہونا ہے, یہ ذرا چونکہ انسان اس کا تجربہ کرتا ہے, ہر انسان جو ہے وہ اس سے سروکار رکھتا ہے, تو اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ جہان کس طریقے سے انسان کے تصور اور فکر میں منعکس ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جہان اس کے مقابل میں ہے اور وہ اس کو جب دیکھتا ہے تو وہ چیزیں اس کے منعکس ہو جاتی ہیں ذہن کے اندر. فرماتے ہیں کہ خود انسان جو ہے, جیسا کہ پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ انسان اپنے بارے میں آگاہی رکھتا ہے, اور یہ آگاہی اور عالم بننا اپنے بارے میں یہ کیا ہے, حضوری ہے, حصولی طور پر نہیں ہے. کیا عرض کیا کہ یہ ایک منطقی ٹرم ہے کہ اس کو ابھی یہاں پر بیان کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے, چونکہ وقت جو ہے وہ درکار ہے اس کو کھولنے کے لیے. تو خود انسان کے بارے میں عالم بننا, خود اپنے بارے میں یعنی عالم بننا, جہان کے بارے میں عالم بننا, یہ کوئی اتنا مشکل مرحلہ نہیں ہے. لیکن سوال پھر یہاں پر اٹھتا ہے کہ یہ انسان جب خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو خدا کو پھر یہ کیسے منعکس کرتا ہے اپنے ذہن میں, اور خدا کی معرفت کیسے وہ حاصل کر لیتا ہے باوجود اس کے کہ خدا جو ہے وہ مقابل نہیں رکھتا ہے, چونکہ خدا جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے, تو کیسے اس کے بارے میں عالم بنتا ہے. تو یہاں پر شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سوال کے جواب میں مجھے ایک اور فرق بیان کرنا پڑے گا جو کہ ذہن اور آئینے کے درمیان پایا جاتا ہے, تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ واضح اور روشن ہو جائے گا. وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں آئینے کو तो आईने के सामने आप दो किस्म के फूल रखें, यानी दो किस्म के आप बल्कि फूल नहीं गमले रखें, एक गुलाब का फूल हो, फूल का गमला हो, और एक मस्नूई और आर्टिफिशियल आप फूल लेकर आ जाएं और उसका गमला लेकर आ जाएं। और शर्त यह है कि वो बिल्कुल सेम लगने चाहिए दिखने के अंदर। गुलाब का जो आप फूल का जो गमला लेकर आएंगे वो सेम होना चाहिए, एक उनमें से आर्टिफिशियल है और एक उसमें नेचुरल है। अब आप उसको आईने के सामने रखते हैं दोनों को, तो अब मुलाहजा करें कि आर्टिफिशियल जो गमला होगा, जो फूल होगा गुलाब का, ये जाहिर सी बात है चूंकि आर्टिफिशियल है, इसके अंदर ना किसी किस्म का रुष्ट होगा, ना इसके अंदर नमूव पाई जाएगी, ना इसके अंदर कोई तब्दीली आएगी, ये जैसे का है वैसा ही रहेगा। लेकिन जो नेचुरल है गुलाब का फूल और वो गमले के अंदर मौजूद है, इसमें तब्दीली आती रहेगी, इसका रंग बदलेगा, इसका कद बदलेगा, इसके अंदर जो खुशबू पैदा होगी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पैदा हो रही हैं। लेकिन आईना जो है उसके लिए ये तब्दीलियां कोई फ़र्क नहीं रखती हैं, चूंकि आईने का काम है फ़कत मुनअक्किस करना, इनकास के अलावा, रिफ्लेक्शन के अलावा वो कोई और काम नहीं कर सकता है। लेकिन जब हम जहन के ऊपर जो है वो तवज्जो करते हैं, जहन की तरफ आते हैं, तो हमें हकीकत इससे बालातर और बेहतर नज़र आती है कि आप दो गमले फूल के एक ही जैसे जो बिल्कुल सेम लगते हों वो रखें, एक नेचुरल हो और एक आर्टिफिशियल हो। तो एक गमला के जिसके अंदर तब्दीलियां रूनमा हो रही हैं, उसके कद के अंदर, उसके रंग के अंदर, उसकी बू के अंदर, और इस तरह की तब्दीलियां जो रूनमा हो रही हैं, तो यहाँ पर इंसान का जहन एक हकीकत की तरफ मुतवज्जे होता है। वो क्या है? वो मुतवज्जे होता है कि इस पौधे के अंदर जिंदगी है, हयात है। अब आप यहाँ पर देखें कि जहन ने यहाँ पर एक हकीकत से पर्दा उठाया है, एक हकीकत तक पहुंचा है, एक हकीकत को कशफ किया है। वो क्या है? जिंदगी। लेकिन जहन जो है उसने इस जिंदगी को देखा नहीं है, बल्कि क्या है, उसके आसार को फकत देखा है। हम में से कोई भी इंसान जो है वो जिंदगी नाम की हकीकत को देखता नहीं है, बल्कि जिंदगी के आसार को उसकी तरफ जो है मुतवज्जे होता है। मसलन मेरा बोलना, मेरा उठना बैठना, मेरा खाना पीना, मेरा रुश्त व नमूव करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आसार हैं एक हकीकत के जिसको ज़िंदगी और हयात कहा जाता है। इंसान का जहन क्या करता है? वो चीज़ के जिसको वो देख रहा है अपने मद्दे मुकाबल, जहन उसके अंदर नफूज कर जाता है, उसके अंदर तक चला जाता है, और जो चीज़ उसको नज़र नहीं आ रही है मुस्तकीम तौर पर, डायरेक्टली जिसको नज़र नहीं आ रही है, वो उस तक भी पहुंच जाता है और उसको कशफ कर लेता है। जिस तरह के आपको यहाँ पर मिसाल दी है शेख मुतारी रहमतुल्लाह अलैह, इस मतलब को मज़ीद खोलने के लिए एक मिसाल देते हैं। फरमाते हैं कि हम जिस्म नाम की एक हकीकत को मानते हैं, हम इस बात का अकीदा रखते हैं कि जिस्म है, मसलन ये बदन मेरा जिस्म है, ये मेज़ जिस्म है, दुरुस्त है, जिस्म की हकीकत से हम आशना हैं और उसको मानते भी हैं। तो शहीद मुतार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस्म की हकीकत तक आप कैसे पहुंचे? अगर आप कहें कि ये आपने लम्स किया इसको तो इसके अंदर सख्ती पाई जाती है, तो आया ये जो सख्ती वाली खसूसियत है, आप कह सकते हैं कि यही सख्ती वाली खसूसियत मेज़ है? इंसान फौरन कहेगा कि नहीं, बल्कि आप ये कहेंगे कि मेज़ है कि जो सख्ती की सिफत रखता है, दुरुस्त है, यानी वो जिस्म है कि जो सख्ती की सिफत रखता है। अगर आप देखते हैं कि इस मेज़ का जो तूल अर्ज और उमक है, लंबाई चौड़ाई और गहराई है, इसको अगर आप देखते हैं, तो आया आप कह सकते हैं कि ये लंबाई चौड़ाई और गहराई यही मेज़ है? तो आप कहेंगे यानी मेज़ यानी मुराद मेरी जिस्म है, यानी मेज़ जिस्म जो कि मेज़ की शक्ल में, जिसको हमने मेज़ का नाम दिया हुआ है, मुराद मेरी जिस्म ही है। आया ये जिस्म है मेज़ वाला, यही उसका लंबाई चौड़ाई गहराई रखना? हम कहेंगे नहीं, जिस्म नहीं है लंबाई चौड़ाई गहराई, बल्कि जिस्म है कि जो लंबाई चौड़ाई गहराई रखता है। और इस तरीके की आप खसूसियात लेकर चलें, जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है वो जिस्म के आसार हैं। आप उस उन आसार को देखकर एक हकीकत की तरफ मुतवज्जे होते हैं, उसको हम जिस्म कहते हैं। उसका मतलब यह है कि जहन के अंदर यह कुदरत मौजूद है कि जहन न सिर्फ ये कि मुस्तकीम और डायरेक्टली जो चीज़ें उसको नज़र आ रही हैं और मुनअकिस हो रही हैं उसके जहन में, उनके बारे में आलिम बनता है, उन हकायक की तरफ मुतवज्जे होता है, बल्कि जहन जो है उस अशिया की के जो उसके मद्दे मुकाबिल हैं उनकी ज़ात के अंदर चला जाता है, उनके अंदर नफूज कर जाता है और उनकी उस हकीकत की तरफ मुतवज्जे हो जाता है कि जो हकीकत डायरेक्टली नज़र नहीं आ रही है। जिस तरह के हमने भी हयात के बारे में बात की है कि ज़िंदगी की हकीकत को इंसान डायरेक्टली नहीं दे सकता है, लेकिन ज़हन इंसान मुतवज्जे हो जाता है कि ये जो हरकत कर रहा है, ये जो तब्दीली इसके अंदर आ रही है, इसके पीछे एक हकीकत कार फरमा है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं और उसको हम हयात का नाम देते हैं। तो इसी तरीके से वो जिस्म की तरफ भी मुतवज्जे हो जाता है। तो अब यहाँ पर नतीजा ये लेना चाहते हैं कि ज़हन इंसान और आईने के दरमियान फ़र्क ये है कि आईना फ़कत उन चीज़ों को मुनअक्किस करेगा कि जो उसके सामने आएगी, डायरेक्टली जो उसके सामने मौजूद होगी, लेकिन इंसान का जहन इससे कहीं पेचीदा है। ये ना सिर्फ ये कि जो डायरेक्टली देख रहा है, डायरेक्टली मुनअक्किस कर रहा है जिन चीज़ों को, उनका आलिम है और उन हकायक की तरफ मुतवज्जे होता है, बल्कि वो इन अशिया के अंदर नफूज कर जाता है और उन हकीकतों की तरफ भी मुतवज्जे हो जाता है कि जो डायरेक्टली मुनअक्किस नहीं हो सकती हैं, डायरेक्टली महसूस नहीं की जा सकती हैं, डायरेक्टली देखी नहीं जा सकती हैं। तो लिहाजा ये उसकी उसको जो है वो कशफ कर लेता है, उसकी तरफ तवज्जो दिला देता है, ख़ुद मुतवज्जे हो जाता है। तो खुदावंद मुताल भी इसी तरीके से है, इंसान जो मुतवज्जे होता है खुदा की तरफ, ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली मद्दे मुकाबिल करार पाए तो खुदा नाम की जो हकीकत है उसकी तरफ वो मुतवज्जे हो जाए और उसको उसके बारे में मारिफत हासिल कर ले। ज़रूरी नहीं है डायरेक्टली होना, इंसान बहुत सारे हकायक की तरफ मुतवज्जे है, बहुत सारे हकायक का अकीदा रखता है, लेकिन उनको डायरेक्टली नहीं देखा हुआ, जिस तरह के बाज़ मिसालें आपकी खिदमत में बयान की हैं। तो बस यहाँ पर एक सवाल जो है वो जवाब दे दिया गया कि खुदावंद मुताल की इंसान मारिफत कैसे हासिल कर लेता है, इंसान के तसव्वुर के अंदर खुदा किस तरीके से मुनअक्किस हो जाता है, हालांकि खुदावंद मुताल जो है वो जिस्म व जिस्मानियत से मुबर्रा है, हालांकि खुदावंद मुताल इंसान के मद्दे मुकाबिल नहीं आ सकता है, तो कैसे ये मुनअक्किस होता है, उसके तसव्वुर में कैसे आता है, उसकी फ़िक्र में कैसे आता है। तो उसका जवाब जो है इस तीसरे फ़र्क के ज़रिए जो है मालूम हो जाता है कि इंसानी ज़हन किस तरीके से बाज़ ऐसे हक़ायक़ तक पहुंच जाता है कि जो डायरेक्टली उसके सामने नहीं होते हैं, बल्कि वो मुस्तकीम जो आसार सामने होते हैं उनके तवस्सुत से उसकी गहराई में जाता है और हकीकत को कश्फ कर लेता है। तो इंसान इस पूरी कायनात को देखता है जो कि आसार हैं, जो कि अफ़आल हैं खुदा के, इसके तवस्सुत से वो खुदा की हकीकत की तरफ जो है मुतवज्जे हो जाता है और खुदा की मारफत जो है वो हासिल कर लेता है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।